बहुत खून बहाने के बाद मिली थी आजादी बांग्लादेश को। आजादी मिलने के 24 दिन बाद जब बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान की जेल से छूटकर वापस ढाका पहुंचे थे, तो ऐसा लगा मानो पूरा देश ही उनके स्वागत में ढाका हवाई अड्डे पर पहुंच गया हो। लेकिन 4 सालों के भीतर ही न सिर्फ शेख मुजीब बल्कि उनके पूरे परिवार को एक सैनिक विद्रोह में मार डाला गया। लेकिन शायद इससे भी हृदय विदारक था मुजीब के 4 निकट सहयोगियों सैयद नसरुल इस्लाम, ताजुद्दीन अहमद, कैप्टन मंसूर अली और कमरुज़्ज़मां की जेल के सीखचों के पीछे नृशंस हत्या। बांग्लादेश की आज़ादी के दौरान भारत में बनी बांग्लादेश की पहली सरकार के प्रधानमंत्री ताजुद्दीन अहमद की बेटी शर्मीन अहमद आजकल अमरीका में रहती हैं। उनको अभी तक याद है जब शेख मुजीब की हत्या के कुछ दिनों के भीतर उनके पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया था।
Immediately after his assassination, we were put under house arrest within about say 3 hours.
शेख मुजीब की हत्या के 3-4 घंटे के भीतर ही सेना के जवान आए थे और हमें हमारे घर पर ही नजरबंद कर दिया गया था। 22 अगस्त को उनसे कहा गया कि उन्हें बातचीत के लिए खूनकर मुश्ताक अहमद और उन लोगों के पास ले जाया जा रहा है जिन्होंने शेख मुजीब की हत्या की साजिश रची थी। इससे पहले वो उन लोगों की शेख मुजीब के बाद राष्ट्रपति बनने की पेशकश ठुकरा चुके थे। जाते समय मेरी माँ ने उनसे पूछा था कि आप वापस कब आएंगे, क्योंकि वो उन्हें बातचीत के लिए तो ले जा रहे थे लेकिन उन्होंने उनसे अपने कपड़े भी साथ ले जाने के लिए कहा था। जब वो घर से बाहर निकले तो उन्होंने मेरी माँ से हाथ हिलाकर कहा कि ये मान कर चलो कि अब मैं कभी वापस नहीं आऊँगा।
इस बीच उनके परिवार वालों को बहुत मुश्किल के बाद उनसे मिलने की अनुमति दी गई।
After he was taken, we were house arrested for a month. It lingered even after my father was taken away.
उनके जेल जाने के 1 महीने बाद तक हमें घर में ही नजरबंद रखा गया। मेरे चाचा द्वारा बहुत सी याचिकाएं दायर करने के बाद हमें नजरबंदी से छुटकारा मिला और हमें अपने पिता से मिलने का मौका मिल पाया। हम उनसे सितंबर के अंत में मिले। मेरे पिता ने मेरी माँ से कहा कि जो भी बाहर है उनसे कहो कि वो मुश्ताक से कोई समझौता ना करे और उनका विरोध जारी रखे। मेरे पिता और उनके 3 साथियों की गिरफ्तारी के बाद आवामी लीग के बहुत कम नेता सक्रिय रह गए थे।
ऑन 1st November, that was my mother's last visit with my father. And during that time, my mother had already appealed.
1 नवंबर को मेरी माता आखिरी बार मेरे पिता से मिलने जेल गई। मेरी माता ने अदालत में याचिका दायर की कि मेरे पिता के खिलाफ कोई आरोप नहीं था, तब भी उन्हें जेल में कैद कर दिया गया था। उस पर 5 नवंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन मेरे पिता ने मेरी माँ से साफ कह दिया था, लिली, मैं नहीं समझता कि आप मैं जीवित रहूँगा, मुझे जिंदा नहीं रहने देंगे। मेरी माँ ने मुझे आकर बताया कि उस दिन उन्हें मेरे पिता में बहुत खालीपन लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है।
इस बीच शेख मुजीब के हत्यारों के खिलाफ ब्रिगेडियर खालिद मुशर्रफ के नेतृत्व में एक और सैनिक विद्रोह हुआ। समझौता हुआ कि खोंडकार मुश्ताक अहमद अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और मुजीब के हत्यारे अपने परिवार समेत बांग्लादेश छोड़ देंगे। लेकिन जाने से पहले उन्होंने तय किया कि वो ढाका की सेंट्रल जेल में बंद मुजीब के 4 निकटतम सहयोगियों की हत्या कर देंगे। शेख मुजीब पर किताब लिखने वाले और बांग्लादेश के मशहूर पत्रकार सैयद बदरुल एहसन बताते हैं।
खोंडकार मुश्ताक अहमद का रेपुटेशन ये कि उन्हें हर वक्त राइट विंग माना जा रहा था और उनके बारे में ये एलिगेशन भी है कि 1971 में जब जंग चल रहा था तो वो फॉरेन मिनिस्टर थे उस एग्जाइल गवर्नमेंट के। वो जाने वाले थे सितंबर 71 में यूनाइटेड नेशंस में, मगर उस वक्त ये खबर मिली है उस प्राइम मिनिस्टर ताजुद्दीन को कि वो वहां जाकर बांग्लादेश गवर्नमेंट इन एग्जाइल की पॉलिसी यानी कि इंडिपेंडेंस फॉर बांग्लादेश इसको छोड़ के वो वहां न्यूयॉर्क में जाके पाकिस्तान के साथ एक कॉन्फेडरेशन करेंगे। जब ये इन्फॉर्मेशन इन्हें मिला तो उनको रोक दिया गया, उनके जगह किसी और को भेज दिया गया। फिर ये खोंडकार मुश्ताक ये याद रखे बिकेम वेरी इनिमिकल ये 4 लीडर्स के बारे में। और जब कू हुआ अगस्त 15 को इन्हें जो मेजर्स और लेफ्टिनेंट कर्नल्स या कर्नल्स थे इनके साथ इनका रابطہ पहले से ही था, तो फिर उस सुबह को इन्हें कॉमर्स मिनिस्टर उनको कॉमर्स मिनिस्टर खंदकार मुश्ताक को प्रेसिडेंट बना दिया गया। 20 तारीख को इन चार नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया और 30 नवंबर जेल में, वो जेल में जाकर जो मर्डरर्स थे, असैसिन थे शेख मुजीबुर रहमान के, ये लोग जाने वाले थे बैंकॉक, मगर जाने से पहले ये कुछ लोग, कुछ असैसिन वहां ढाका सेंट्रल जेल में गए, वो अंदर जाना चाहे एकदम रात को जेल सुपरिंटेंडेंट वो तो इन्हें अंदर आने की इजाजत नहीं दे रहे थे, कानून भी नहीं है। फिर बंगो भवन से, बंगो भवन यानी कि प्रेसिडेंट हाउस कहा जाता है, खंदकार मुश्ताक अहमद, उन्होंने फोन किया, फोन करके इनको बताया ये जेल सुपरिंटेंडेंट को, ये लोग, इन लोगों को आने दीजिए, ये जो करना चाहते करने दीजिए।
इस घटना का और विस्तृत ब्यौरा एंथनी मैस्क्रेनहिस ने अपनी किताब बांग्लादेश ए लेगेसी ऑफ ब्लड में दिया है।
रशीद ने मुझे टेप रिकॉर्डेड इंटरव्यू में बताया, सुबह 4 बजे के आसपास टेलीफोन की घंटी बजी, मैंने फोन उठाया, दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं DIG प्रिजन बोल रहा हूँ, क्या मैं राष्ट्रपति महोदय से बात कर सकता हूँ? रशीद ने फोन खोंडकर मुश्ताक अहमद की तरफ बढ़ा दिया। राष्ट्रपति ने कुछ समय तक सुना कि वो शख्स क्या कह रहा था, फिर उन्होंने धीरे से कुछ कहा, फिर मैंने उन्हें जोर से कहते हुए सुना, हाँ हाँ हाँ। मैं समझ नहीं पाया कि क्या कह रहे थे वो, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज की अनुमति दे रहे हों।
ताजुद्दीन अहमद की बेटी शर्मीन अहमद ने उन सब लोगों से बात की है जो उस रात ढाका की सेंट्रल जेल में घटनास्थल के आसपास मौजूद थे।
अराउंड 3:40 मिस्टर अब्दुल समद आजाद ही वोक अप टू से हिज तहज्जुद प्रेयर एंड टू रीड द कुरान।
सुबह 3:40 पर अब्दुल समद आजाद अपनी सुबह की नमाज और कुरान पढ़ने के लिए जगे। उन्होंने जेल के बाहर कुछ शोर सुना, फिर उन्होंने देखा कि कुछ लोग अंदर आए हैं, उनके साथ जेलर भी थे। उन्होंने पहले मंसूर अली को उनकी कोठरी से निकाला। वो बहुत विचलित दिखाई दे रहे थे क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें इतनी सुबह सुबह क्यों जगाया गया है। दूसरे कमरे में कमरू सभा साहब थे, उनके साथ आवामी लीग का एक कार्यकर्ता भी रह रहा था। मैंने उससे भी बात की, उसने बताया कि कमरू समाज साहब सिर्फ पायजामा पहने हुए थे क्योंकि वो सो रहे थे। जाने से पहले जब उन्होंने कमीज पहनने की कोशिश की तो मैंने देखा कि उनके हाथ बुरी तरीके से कांप रहे थे। वो उन दोनों को अलग कर मेरे पिता के कमरे में ले आए जिसमें वो सैयद नजरुल इस्लाम के साथ रह रहे थे। उन्होंने उस कमरे में रह रहे दूसरे लोगों को निकाल कर दूसरे कमरे में भेज दिया।
मोहसिन बुलबुल वाज इन द सेकंड रूम विद कमरू जमान, ही टोल्ड मी इन द इंटरव्यू ही कुड हियर द स्क्रीमिंग ऑफ द किलर्स आउटसाइड।
उन लोगों में से एक मोहसिन बुलबुल ने मुझे बताया कि वो हथियारों का चिल्लाना साफ साफ सुन पा रहे थे। वो पूछ रहे थे कि इतना समय क्यों लग रहा है, हमारे पास इतना समय नहीं है। जेल के एक सिपाही ने करीब करीब धक्का देते हुए कमरू जमा को मेरे पिता के कमरे में पहुंचा दिया।
जैसे ही ताजुद्दीन अहमद ने उन सबको अपने कमरे में लाए जाते देखा, वो समझ गए कि कुछ बुरा होने वाला है।
When they gathered them together in the room, my father immediately told Sayyid Nazrul Islam when they're coming.
जब उन्होंने सबको मेरे पिता के कमरे में इकट्ठा किया, उन्होंने फौरन कहा, नजरुल साहब, हमारे पास बहुत समय नहीं बचा है, आइए हम लोग वजू कर ले। जैसे ही उन्होंने वजू किया, जेलर चारों हथियारों के साथ उनकी कोठरी के सामने पहुंच गया। बाद में जेलर ने मेरी छोटी बहन को बताया कि उसे ये पता ही नहीं था कि ये लोग उन्हें मारने आए हैं। वो इन नेताओं का हथियारों से परिचय करा ही रहा था। कैप्टन मंसूर का परिचय कराते हुए वो इतना ही कह पाए, ये वो अपना शब्द भी पूरा नहीं कर पाए कि हथियारों ने ऑटोमेटिक हथियारों से गोली चलानी शुरू कर दी। उन्होंने कुल 60 राउंड गोलियां चलाई, वो चारों जमीन पर गिर गए।
60 राउंड गोलियां चलने के बाद भी ताजुद्दीन अहमद और कैप्टन मंसूर अली की मौत तुरंत नहीं हुई।
My father actually did not die. He died of bleeding. He did. If he was taken right after that to the hospital.
मेरे पिता तुरंत नहीं मरे। वो बाद में खून बह जाने की वजह से मरे। अगर उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता, तो वो बचाए जा सकते थे। एक गोली उनकी निचली कमर से घुसकर दूसरी तरफ निकल गई थी। एक गोली उनके पैर के निचले हिस्से में लगी थी। एक और गोली उनके बाह और सीने के बीच से निकल गई थी, लेकिन उनके महत्वपूर्ण अंगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। फिर लोगों ने सुना कि मेरे पिता रह रहे थे और पानी मांग रहे थे, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि जेल प्रशासन का कर्तव्य बोध कहाँ चला गया था। उन्होंने कैसे बाहरी लोगों को जेल में घुसने दिया? गोली चलाए जाने के बाद वो उन लोगों को अस्पताल क्यों नहीं ले गए? बाद में मैंने और मेरी बहन ने ये जानने के लिए कि वास्तव में क्या हुआ था, उन सब लोगों से बात की। उन्होंने हमें बताया कि इन हथियारों ने आते ही हमसे कहा कि हम इन चारों नेताओं से मिलना चाहते हैं। हमने उनसे कहा भी कि आप हथियार लेकर जेल के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इन लोगों को जान से मारने आए हैं।
मैंने शर्मीन से पूछा कि क्या ये सही है कि मारे गए कुछ नेताओं को संगीन भोंक कर मारा गया था?
Yes, well, my sister is eye witness to that because Mansoor Ali's dead body.
जी हाँ, मेरी बहन इसकी गवाह है। मंसूर अली के शव को उनके एक रिश्तेदार के घर में लाया गया था। वहाँ लोगों ने देखा कि उनकी आंखों और पेट में संगीन फूंकी गई थी। जैसे ही हथियारों का पहला गुट वहाँ से गया, एक दूसरा गुट ये जानने के लिए वहाँ पहुँच गया कि ये लोग जिंदा है या मर गए। जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो मंसूर अली अभी भी जीवित थे और कराह रहे थे। उन्होंने उनकी आवाज बंद करने के लिए उन्हें संगीन फूंक दी।
उधर जब ये खबर बंग भवन पहुंची तो बांग्लादेश मंत्रिमंडल की बैठक चल रही थी। खोंडकार मुश्ताक अहमद ने ढोंग किया जैसे उन्हें इसके बारे में पता ही ना हो।
मंत्रिमंडल की बैठक खत्म होने वाली ही थी कि डायरेक्टर ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस एयर कमोडोर बदहवास हालत में चिल्लाते हुए जेल में हुई हत्याओं की खबर लेकर आए। सुनते ही खोंडकार मुश्ताक अहमद वहां मौजूद दूसरे लोगों की तरह ही अपने रंज का इजहार करने लगे, जैसे उन्हें इसके बारे में कुछ पता ही न हो। वास्तव में मुश्ताक अव्वल दर्जे का ढोंग कर रहे थे।
मारे गए नेताओं के परिवारों को पूरे 48 घंटे बाद उनके शव सौंपे गए।
नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफ 4th नवंबर अराउंड 8:39 माय फादर्स कॉलेज फ्रेंड डॉक्टर करीम।
अगली सुबह 4 नवंबर को सुबह 8:30 या 9 बजे मेरे पिता के कॉलेज के दिनों की दोस्त डॉक्टर करीम मेरी माँ से मिलने आई। मैं अपनी माँ की बगल में ही खड़ी थी। उन्होंने ये खबर दी कि ढाका सेंट्रल जेल के अंदर फायरिंग हुई है। जेल के डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे पिता और उनके 3 साथियों की हत्या कर दी गई है। मुझे याद है कि मैं और मेरी माँ घर के बाहर खड़े थे। जैसे ही उन्होंने ये सुना वो बिल्कुल जम सी गईं।
I just screamed and said that this is not a this news, you know, I don't believe in this news.
मैं बहुत जोर से चिल्लाई और बोली, मैं इसे नहीं मानती। उसी शाम इस बात की पुष्टि हो गई कि वास्तव में उन्हें मार डाला गया था। जेल के प्रशासन ने शव को हमें सौंपने में बहुत लंबा वक्त लगा दिया। मेरे पिता का पार्थिव शरीर 5 नवंबर की आधी रात को हमारे घर पहुंचा, यानी उनकी मौत के 48 घंटे से भी अधिक समय के बाद।
सिर्फ 3 दिन के भीतर ही ब्रिगेडियर खालिद मुशर्रफ के सैनिक विद्रोह के खिलाफ एक दूसरा सैनिक विद्रोह हो गया। इसके बाद जनरल जियाउर रहमान सत्ता में आए। 21 साल तक इस बर्बर हत्याकांड की कोई जांच नहीं हुई। 1996 में शेख हसीना के सत्ता में आने के बाद इस पूरे मामले की जांच फिर से शुरू हुई। कुछ लोगों को फांसी पर भी चढ़ाया गया।
जब वो शेख मुजीबुर रहमान के असैसिनेशन का जो ट्रायल हुआ, उस वक्त 6 असैसिन जो थे, जो खूनी थे, उनको फांसी पर चढ़ाया गया। और ये खूनी इसी मामले में भी थे, तो जाहिर है वो उसी मामले में उनको फांसी पर भेज दिया गया। कुछ और एब्सकॉन्डिंग है, या बीएमपी के बेगम खालिदा जिया के टाइम पे फिर एक ट्रायल किया गया ये जेल के लिए के बारे में, मगर वो एक व्हाइट वॉश जैसा था। इन्होंने कोई सबूत नहीं की, किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया। सिर्फ ये कहा जाता है कि एक रिसालदार थे बांग्लादेश आर्मी में, मुस्लिमुद्दीन, वो एक शख्स जाके इन चारों को हत्या कर दिया। वो मुझे अनबिलीवेबल। और फिर ये जो रिसालदार मुस्लिमुद्दीन है, 75 के बाद ये कहाँ गए? कुछ लोग कहते हैं इंडिया में गए, कुछ लोग कहते हैं यूरोप चले गए, और इनका कोई वेयर अबाउट अब कहाँ है, जिंदा है या मर गए, वो भी कुछ मालूम नहीं है। एक और जानकारी बाकी है, 1975 के अगस्त 15 और 3 नवंबर के साथ जो पॉलिटिकल फोर्सेस लिंक थे, यानी कि खंदका मुश्ताक अहमद और अवामी लीग के कुछ और डिसिडेंट थे, मुश्ताक के प्रो मुश्ताक एलिमेंट थे, उनको कभी एक्यूज नहीं किया गया। अब इस वक्त हमारी हुकूमत ये सोच रही है कि इनको भी और ज्यादातर ब्रॉडर इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि उस वक्त अपार्ट फ्रॉम द मिलिट्री ऑफिसर सिविलियंस कौन कौन थे।
इन चारों नेताओं के कुछ हत्यारे अभी भी कानून की पकड़ से बाहर हैं और बांग्लादेश के बाहर गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं। मैंने शर्मीन अहमद से पूछा, क्या आप समझती हैं आपको न्याय मिल पाया?
आई थिंक दोज हु आर एट लार्ज दे आर सफरिंग बिकॉज़
मैं समझती हूँ कि जो लोग अब भी भागे हुए हैं उनको भी एक तरह से सजा ही मिल रही है। उनको हमेशा के लिए पूरी दुनिया से छिप कर रहना होगा, ये भी तो एक तरह की सजा है। उन लोगों के लिए मेरा संदेश है कि आप किसी को मारकर गलत को सही नहीं कर सकते। उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार है। उनको अपने आप से पूछना चाहिए कि अगर उनके साथ यही होता तो उनके बच्चों और परिवार पर क्या गुजरती। ये लोग राष्ट्रीय नेता थे, वो देश को अभी भी बहुत कुछ दे सकते थे। उनको उन्हें मारकर मिला क्या? इन लोगों में बहुत से राजनीतिक षड्यंत्रकारी भी थे। उनको सजा दिलाने के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। इस मामले की फिर से जांच होनी चाहिए। मैं ऐसा बदले की भावना से नहीं कह रही हूँ, बल्कि जो गलत हुआ उसे सही करने के लिए ये सब कह रही हूँ।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।